श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी यमुना जयो जयो महावन Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Everybody please call out Sab log pukaro Everybody
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Bhimanande Shri Vrindavan Dham Ki Shri Kamyavan Dham Ki Shri Bhojan Thali Dham Ki Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई ऑफर माई हम्बल प्रणाम्स टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ब्लेस मी टू स्पीक। हरे कृष्णा, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा हिंदी में बोला, हिंदी सॉरी। तो आप सबका, सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। हरे कृष्ण। तो भोजन थाली श्री काम्य वन में आप सबका स्वागत है। आज अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी का दिन है, और कौन सा दिन है आज? शुक्रवार है, आज शुक्रवार है। वृंदावन में धाम में आने के बाद समय जो है वो क्या कहते हैं उसको, इनकॉन्स्पिक्यूस हो जाता है। किसी को पता चलता नहीं कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, कहाँ क्या हो रहा है। वही वृंदावन धाम में आने का मकसद है, उद्देश्य भी वही है। हरे कृष्ण। तो आज धन त्रयोदशी का दिन है, आप सबको धन त्रयोदशी की बधाई है। कल चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी, और परसों दिवाली है। हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम, इसमें अनंत वन है, उसमें 108 प्रधान वन है, उनमें से 12 वन श्री भगवान कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। वो महावन, काम्य वन, कोकिला वन, ताल वन, कुमुद वन, भांडिर वन, छत्र वन, कदिर वन, लोह जंग वन, भद्र वन, बहुला वन और बेल वन, ऐसे 12 वन हैं। इससे भी अधिक भगवान को श्री वृंदावन धाम प्रिय है, वृंदावन प्रिय है। तो वृंदावन के बाद में सबसे प्रिय वन जो है वो काम्य वन है, जहां पर आप सब लोग बैठे हैं। ऐसा कहते हैं, काम वन जाए तो काम बन जाए। मतलब काम्य वन में आने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, ऐसा ही भगवान का धाम है। विशेष रूप से ये भगवान का बाल लीलाओं का प्रिय स्थान है। यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को संपन्न किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने यहाँ पर माधुर्य लीलाओं को भी संपन्न किया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग भाव है। विशेष रूप से कई बार ब्रज लीला में ये कथा आती है कि ब्रजवासी चाहते हैं कि त्रिवेणी चले जाएं, आदिबद्री चले जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, हाँ कई दिन कई गंगा जी स्नान करने चले जाएं। हर समय भगवान ने उनको रोका है और यहीं पर उन स्थानों को प्रकट किया है। और वास्तव में देखा जाए तो सभी जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं पूरे विश्व में, वो सभी तीर्थ और धाम ब्रज में आश्रय लेते हैं। यहीं पर वो अपना खुद के, क्योंकि सब व्यक्ति रूप हैं, भगवान के भक्त हैं और धाम के रूप में उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अपने उद्धार के लिए, क्योंकि सब लोग उनके पास जाते हैं और अपने पाप छोड़ देते हैं उनके पास, तो वो अपने उद्धार के लिए, अपने शुद्धि के लिए फिर ब्रज में आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पर काम्य वन में खास करके आदि बद्री, केदारनाथ, श्री गया, रामेश्वर, सेतुबंध, श्रीलंका, ऐसे कई सारे धाम यहाँ पर विराजमान हैं। तो संक्षेप में आपका सबके बारे में बताएंगे। इसका नाम लिखा है यहाँ पर आदि बद्री, तो इसका प्रमाण ऐसा है कि जो बद्रीनाथ है हिमालय के अंदर, उसके पहले ये धाम यहाँ प्रकट हुआ है। उसका भी पुरात इस्लाम उसको दिया है आदि बद्री। तो आदि बद्री केदार यहाँ पर 15 किलोमीटर दूर है, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में सॉरी। तो इसकी कथा ये है कि जब भगवान का जन्म नहीं हुआ था, नंद बाबा बड़े उम्र के हो गए थे, हमने सुना है कि 85 साल के ऊपर उनकी अवस्था हो गई थी, फिर भी उनको बालक प्राप्ति नहीं हुई थी। तभी जाकर उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं बालक प्राप्ति करूंगा, पुत्र प्राप्ति, तब मैं आदि बद्री केदार की यात्रा करूंगा, चार धाम की। तो यथावकाश पुत्र प्राप्ति हुई, लौट के आए वृंदावन में। फिर एक दिन उनका मन हुआ कि हम आदि बद्री जाते हैं, हमारी मन्नत पूरी करते हैं। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा आँख बंद कर लो। पद्म बोला आँख खोलो। तो आदि बद्री केदार चार धाम प्रकट हो गए। इतना सुंदर वातावरण है वहाँ पर, आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप ब्रज में हो, आपको लगेगा कि आप हिमालय में ही हो। लेकिन हिमालय की चोटियाँ बहुत हजारों फीट की ऊंचाई में, ये कुछ सैकड़ों फुट की ऊंचाई में है, और आप आसानी से वहाँ जा सकते हो। और वहाँ पर जाएंगे तो आपको पाप मुक्ति होगी, मोक्ष मिलने की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ पर आने से पाप मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ श्री कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। तो सब नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों के साथ में दर्शन किया, स्नान किया गंगा जी में, अलकनंदा में गंगोत्री जमुनोत्री का दर्शन किया, तो वो स्थान वहां विराजमान। फिर ब्रजवासियों ने उनको बहुत विनती की कि गया में तो सबका श्राद्ध होता है, सबका पुण्य कार्य वहां होता है, हमको जाना चाहिए वहां पर, भगवान ने क्या क्या जरूरत है वहां जाने की। तो गया कुंड प्रकट कर दिया, मुझे पता नहीं हमारी यात्रा में आज जा पाएंगे नहीं, लेकिन उसका महात्म्य ऐसा है कि वही गया में महाप्रभु चैतन्य भी गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, और गया में जाने से मोक्ष प्राप्ति होती है, पापों से पुण्यों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन इस गया कुंड में जाने से उसके साथ में भगवान के प्रेम और भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और यही बात हम हर बार दोहराएंगे, क्योंकि आपको याद रहेगा कि वो सभी बेनिफिट के साथ में यहाँ पर प्रेम भक्ति का एडिशनल बेनिफिट जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो सब जगह पर प्राप्त है। एडिशनल बेनिफिट गया में इस तरह से है कि गया कुंड में जब आप जाएंगे तो केवल आपके वहां जाने से ही, केवल वहां होने से ही, अस्तित्व होने से ही आपके कितने लाइन हैं, पिताजी की लाइन, माताजी की लाइन, सासू जी की लाइन, ये सभी जितने लोग जा चुके हैं उन सबको गोलोक धाम प्राप्त हो जाता है। केवल आपको क्या करना है, वहां जाके जा भी नहीं पाएंगे तो भी आपको यहाँ पर मंत्र पढ़वाएंगे, लेकिन जाएंगे तो केवल हमारे उन लोगों का स्मरण करना है बस, केवल, और हो सके तो आचमन करना है उनके नाम से। लेकिन स्मरण भी करेंगे तो दोबारा उनका श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, बंबई में कहीं देश में जाके। वैसे ही एक बार राधा कृष्ण सखियां ग्वाल बाल सब यहाँ पर लीला कर रहे थे, तो सखियों ने बताया, अरे हमने सुना था आपने तो पुराने जमाने में प्रभु रामचंद्र का अवतार लिया था और रावण का वध किया था। तो हमारे कन्हैया कहते, नहीं नहीं मैं नहीं था वो, मैं तो सादा ब्रजवासी बालक हूँ, यहाँ पर तो बहुत जिद करते हो, वो नहीं नहीं करते हैं। बोले देखो, अगर आप नहीं दिखाएंगे वो रूप हम हमारे लिए, तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। सबसे बड़ी धमकी क्या हो सकती है भगवान के लिए, अगर वाल बाल और गोपियां कहेंगे हम बात नहीं करेंगे तो सब उनका बोलते अस्तित्व ही शून्य हो गया मेरा, बोलते आँख बंद कर लो। तो उन्होंने फिर आँख खोलो, जब आँख खोली तो बड़ा हिंदी महासागर प्रकट हो गया, और बलराम और कृष्ण भगवान लक्ष्मण और राम के रूप में प्रकट हो गए, और सब ग्वाल बाल वानर बन के प्रकट हो गए और सभी ने मिलकर गोपियों के सामने, देखो ये ड्रामा चल रहा है, हमारे प्रभु जी ड्रामा करते हैं ना, कुछ लोग स्टेज पर रहते हैं बाकी सब लोग ऑडियंस में रहते हैं, सब गोपियां बैठे ऑडियंस में और सब ड्रामा हो रहा है। अच्छा। पूरा स्टेज पर में कितना बड़ा था, हिंदी महासागर तो उसमें उनको तो बहुत टाइम लगा था, कुछ बहुत दिन लगे थे उनको, इन्होंने कुछ मिनटों के अंदर पूरा सेतु बना दिया, और सेतु बनने के बाद में सब लोग गए उधर, तो वहां से रावण प्रकट हो गया, दशानन रावण, और बहुत भयंकर युद्ध हो गया और रावण का राम ने वध कर दिया। फिर बोला आँख खोलो, बाग बंद करो, फिर आँख बंद कर दिया, फिर बोला खोलो, तो निकल गया सर। फिर कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल प्रकट हो गए, लेकिन समुद्र सेतु बंद और श्रीलंका वहीं रह गया। अरे मैं जब पहली बार वहां पर गया था, ऐसा मैं थ्रिल हो गया था, सो थ्रिल्ड यू नो टू सी दैट, ऐसे बीच में सडनली आपको रॉक्स मिलेंगे और पूरी लाइन जाती है श्रीलंका तक, और श्रीलंका भी वहां पर है, अभी तो वहां कोई मंदिर वंदिर है नहीं, लेकिन लेकिन कैसा है ना, वो मेन रोड से बहुत 25-30 मिनट का डर्ट रोड से अंदर जाना है, तो बहुत टाइम जाएगा। यस यस, मुझे थोड़ा सा संकोच इस बात का है कि मैं बताते जाऊंगा तो फिर आपका काम आपके बढ़ जाएंगे, फिर वो बंद भी जाएंगे उसके बाद में, फिर शाम को 6 भी बज सकते हैं, आई डोंट नो दैट। तो यही पर वो कुंड है, बहुत फेमस कुंड, तो कहते हैं धर्म कुंड, पांडवों ने यहाँ पर अपने वनवास में कुछ समय यहाँ बिताया था, कामय वन में, यहीं पर दुर्वासा मुनि का लीला हुआ था, वो आए थे 60,000 साल शिष्यों को लेकर, फिर जमुना जी में स्नान, फिर भीम का गदा लेके जाना, हाँ वो लीला भी यही हुई है। और जो धर्मकुंड वही कुंड है जहाँ पर यक्ष ने धर्मराज को प्रश्न किया था, उनके चारों भाई मृत हो गए थे, और फिर धर्मराज ने बड़ी शांति से और बड़े संयम से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, वो धर्मकुंड वहाँ पर है। वहीं पर भगवान कृष्ण ने भी उनको दर्शन दिया था। मतलब भगवान ब्रज छोड़ने के बाद में आए थे ब्रज में, लेकिन इनकॉग्निटो आए थे, केवल पांडवों को मिलने के लिए आए थे जब द्रौपदी ने पुकारा था। यहाँ पर एक मोहिनी कुंड भी है, बहुत सुंदर कुंड। फिर गोपियों ने जिद्द किया, अरे हमने तो सुना था आपने शिवजी महाराज के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। अरे नहीं नहीं कोई मोहिनी वोहिनी कुछ नहीं, मैं तो आपके सामने खड़ा। फिर वही जिद्द किया, फिर गोपियों के लिए भगवान ने यहाँ पर मोहिनी रूप का दर्शन दिया। लेकिन उसका वर्णन ऐसे आता है कि जब भगवान मोहिनी बने तो उस समय जब शिवजी महाराज थे तो वो बहुत सुंदर, विश्व का सर्वोत्तम सौंदर्य प्रकट हुआ था शिवजी के सामने। लेकिन वो मोहिनी मूर्ति जब राधा रानी के सामने प्रकट हो गई तो राधा रानी के सामने वो निस्तेज लग रही थी। राधा रानी का सौंदर्य उन मोहिनी से भी बहुत श्रेष्ठ था। तो वहाँ पर एक कुंड है, मोहिनी कुंड। फिर परशुराम जी ने अपने 21 बार क्षत्रिय संहार करने के पश्चात यहाँ पर आकर 9 कुंड बनाए, वो भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर लुक लुक कुंड है जहाँ पर भगवान लुका छिपी खिला करते थे। और हम जाएंगे अभी राधा गोविंद जी के मंदिर में, वृंदा रानी के मंदिर में, वो वहाँ पर कथा बताएंगे आपको उसकी। तो सबसे पहले हम लोग काम्य वन को प्रणाम करेंगे। ये मंत्र जो है ये शास्त्रों से है, और जब हम लोग हाथ जोड़कर ध्यान करके प्रणाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आत्मशुद्धि और भक्ति में प्रगति होती है। सब लोग बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और बोलिए मेरे बाद में, नमस्ते भगवद रूप, नमस्ते भगवद रूप,
नमस्ते भगवद रूप,
कामना सिद्धिदायिने,
कामना सिद्धिदायिने,
वनयात्रा
प्रसंगेन, वनयात्रा
प्रसंगेन, प्रसीद परमेश्वर, ओम श्रीं काम्यवना अधिपतये गोपीनाथाय नमः। ध्यायेत काम्यवनाधीशम्, ध्यायेत काम्यवनाधीशम्, गोपीनाथं महाप्रभुम्। क्रोश सप्त प्रमाणेन सांगयात्रा समर्पिता, गुह्याति गुह्यम् गोप्स्त्वम् गोपतत्स्वम् गृहाणा अस्मकृतम् जपम्। तो इस काम्यवन की जो अधिदेवता है, काम्यवन वन के वर्गीकरण में आता है। चार प्रकार के वन होते हैं, वन, उपवन, प्रतिवन और अधिवन। तो काम्यवन वन के वर्गीकरण में आता है, और इस हर एक वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन की देवता होती है, प्रिसाइडिंग डीटी। तो बृहन्नारदीय नारदीय पुराण के अनुसार श्री गोपीनाथ जी इस काम्यवन के अधिपति देवता हैं। तो आप यहाँ पर भी भोजन थाली में बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ हैं। और जैसे मैंने कहा कि भगवान की बाल लीलाओं की ये बड़ी प्रिय स्थली है, तो यहाँ पर भगवान एक बार आँख मचौली खेल रहे थे, लुका छुपी। उसमें उन्होंने एक एक अलग गेम बनाया। वो ऐसा था कि उन्होंने कुछ ग्वाल बालों को भेड़ बनने को बताया। भेड़ मतलब यू नो लोमड़ी, क्या बोलते हैं उसको, शीप, शीप नो, बकरी टाइप, मेंढी। कुछ ग्वाल बालों को बोला कि आप मेंढी बन जाओ, कुछ ग्वाल बालों को बोला आप चोर बन जाओ, और कुछ लोगों को बोला कि आप पुलिस बन जाओ। और ये गेम शुरू हुआ। मतलब चोरों को जाकर मेंढियों को चुराना है और पुलिस को जाकर उनको पकड़ना है, ऐसा खेल शुरू हुआ। तो बहुत देर तक चलता रहा ये ऐसा खेल। अचानक भगवान ने देखा कि सभी ग्वाल बाल की संख्या कम 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 होती जा रही है, जितने आए थे। ऐसा है ना, भगवान का जो बाल लीला है वो इतनी सुंदर उसका वर्णन है कि जितने ग्वाल बाल हजारों लाखों संख्या में निकलते थे, और हर एक की कुछ लाखों लाखों गायें होती थी, तो कितनी करोड़ गायें होंगी। लेकिन हर गाय, हर बछड़े को भगवान पहचानते थे कि सुबह हमारे साथ में कौन आया है, कौन नहीं आया है। यू कैन इमेजिन सच मेमोरी एंड सच एलेबोरेट। तो कोई भी नया व्यक्ति आया तो तुरंत पता चलता था। जब बच्चा सुर आया तो पता चला कि ये तो सुबह नहीं आया था, ये बछड़ा लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी पूंछ ऊपर लेके भाग रहा है, घूर घूर के देख रहा है। वैसे ही
उन्होंने देखा कि एक ग्वाल बाल जो है वो आ रहा है इसके अंदर, उसका चेहरे में बहुत रोष है, थोड़ा सा क्रोध है, सात्विक भाव नहीं है, और यहाँ वहाँ संचय मात नो सस्पिशियसली ही इज मूविंग अराउंड। तो बलराम जी के पास गए, देखा बलराम जी दाऊ जी देखो ये तो ग्वाल बाल सुबह तो नहीं आया था, तो समझ गए कि राक्षस है, और वो व्योमासुर था, व्योमासुर। तो व्योमासुर ने सभी ग्वाल बालों को एक एक करके धीरे धीरे करके गुफा में छुपा दिया। तब भगवान ने कहा कि ये भी गंभीर मामला है, तो उन्होंने उनको पकड़ा। जैसे ही पकड़ा तो व्योमासुर ने अपना पूरा विराट स्वरूप दिखा दिया, पर्वत समान बहुत भयंकर स्वरूप दिखाया, और फिर उनका घनघोर युद्ध शुरू हुआ। उनका घनघोर युद्ध का वर्णन पूरा डिटेल में दिया है, यहाँ पर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो भगवान भी ऐसे विराट शरीर में आ गए एकदम पहाड़ जैसे, और दोनों ने आसमान में युद्ध किया, और कभी वो आसमान में कूदते थे, कभी जमीन पर कूदते थे, कभी दूसरे को उठाकर पटकते थे, यहाँ से वहाँ ऐसा बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सब ग्वाल बाल ऐसा देखते रह गए, बलराम जी आराम से खड़े ऐसे बैठ देख रहे थे। तो जब ये भयंकर युद्ध हो रहा था और वो आसमान में कूद लगाकर छलांग लगाकर पृथ्वी पर गिर रहे थे, तो पृथ्वी बहुत दुखी हो गई, मतलब बहुत डर गई, वो चिंतित हो गई। तो बलराम जी ने देखा कि पृथ्वी न केवल इन दोनों के हवा से उड़ने से जंप मारने से कांप रही है, लेकिन भय से भी कांप रही है। तो बलराम जी ने अपने बाएं पैर से अंगूठे से पृथ्वी को दबाया और अपना उत्तरीय वस्त्र जो है पृथ्वी पर डाल दिया और सांत्वना किया, डोंट वरी आई एम देयर, कुछ नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहो, और पृथ्वी को शांत कर दिया। और उसके बाद में भगवान ने फिर व्योमासुर का वध कर दिया। इस बीच में जब भगवान बार बार छलांग लगा रहे थे, तो सामने जो पर्वत है तो आपको दिखा देंगे बाद में, वो एकदम सामने जो पर्वत है,
हाँ सफेद उसके ऊपर मंदिर
है, हाँ सफेद जो मंदिर दिख रहा है ना यहाँ से, वो भगवान के चरण चिन्ह का मंदिर है,
वो लोग जा रहे होंगे,
हाँ। तो उधर ऊपर जो है भगवान ने जहां जहां छलांग लगाई, तो कुछ जगह पर वो हाथ के बल पर गिरे, कुछ जगह पर घुटने के बल पर गिरे, और कुछ जगह उनकी कंठी जो माला पहनी थी उनको, उनका भी निशान वहां पर है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब भगवान लीला करते हैं तो यहाँ के पत्थर, यहाँ का चराचर सृष्टि जो है वो एकदम भाव विभोर हो जाती है और पत्थर पिघलने लगते हैं ऐसे भाव से, इसलिए भगवान ने जब जंप लगाया तो उनके हस्त पद चिन्ह और माला चिन्ह भी वहाँ पर प्रकट हुए, और बलराम जी जहाँ पर भूमि को दबाए हैं वहाँ पर भी उनका चरण चिन्ह प्रकट है। वो आपको जरूर दर्शन कराएंगे, वो तो ग्राउंड लेवल पर ही है, वहीं पर बैठकर मैं अभी जप कर रहा था आप लोगों के आने के पहले। तो इस प्रकार से गर्ग संहिता में लिखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के हस्त और पाद चिन्ह का दर्शन करता है उसे गौलोक धाम में प्रवेश मिलता है। कितना सिंपल बेनेडिक्शन है, हा? लेकिन भगवान ने दिया है स्वयं। तो व्योमासुर का वध करने पर भगवान ने व्योम की शुद्धि की, यानी कि स्पेस ईथर, ही प्योरिफाइड द ईथर। सबसे बड़े पर्यावरणवादी जो हैं वो हमारे कृष्ण भगवान हैं। जब उन्होंने वराह रूप में पृथ्वी को उठाया गर्भोदक सागर से, तो उन्होंने पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। फिर उन्होंने तृणावर्त को जब मारा तो वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। जब कालिया का दमन किया तो जल तत्व को शुद्ध कर दिया, हाँ। और जब दावानल पान किया दो बार तो अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया, और जब भीमासुर को मारा तो अवकाश तत्व को शुद्ध कर दिया। तो जब भगवान ने भीमासुर की वध किया तो प्रकाशमान सब जगह से पृथ्वी पर से स्वर्ग से जय जयकार की ध्वनि आई, जय 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 कृष्ण भगवान की जय। स्वर्ग से जय जयकार का ध्वनि प्रकट हुई, और जैसे हमारे देवता लोग वहाँ के फूल तो मुरझाते नहीं हैं, इतना ओवर स्टॉक में फूल होते हैं, तैयारी रहते हैं, जब भी कुछ होता है तुरंत पुष्पवृष्टि कर देते हैं। तो पुष्पवृष्टि हुई ऊपर से, तो एक ज्योत निकली भ्रुवासुर के शरीर से, बहुत एक ज्योत नहीं बहुत प्रकाशमान तेज निकला, और वो चारों ओर घूमा 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 और सीधे भगवान के शरीर में प्रवेश किया उसने। तो ये कथा जो है नारद मुनि जी राजा बहुलाशो को बता रहे हैं। तो बहुलाशो प्रश्न करते कि अरे ऐसे कैसे हुआ, वो कौन सा पुण्यात्मा था महापुरुष जैसे इतना बड़ा भाग्य मिला उसको। तो फिर नारद मुनि बताते हैं कि काशी में एक राजा थे भीमरथ, बड़े सद्गुणी सदाचारी यज्ञकर्मी पुण्यकर्मी ऐसे समाज कल्याणकारी कार्य करने में भक्ति में सब में निपुण थे, श्रेष्ठ थे। और दानी थे, धनुर्धर विद्या में प्रवण थे, विष्णु भक्ति परायण थे, तो यथावकाश उन्होंने पुत्र को राजा बनाकर वानप्रस्थ ले लिया और मलयगिरी जहाँ पर चंदन आता है वहाँ पर जाकर ध्यान करने लगे। 1,00,000 वर्ष उन्होंने तपस्या किया वहाँ पर, और उसके पश्चात वहाँ पर पुलस्त्य मुनि अपने शिष्यों को लेकर पहुँचे तो उन्होंने उनको दंडवत नहीं किया, ना खड़े हुए, ना प्रणाम किया, ना दंडवत किया। तो पुलस्त्य मुनि ने उनको शाप दिया, तो दैत्य हो जा। फिर ये उनके शरणागत हो गए और फिर उनको शाप मिला कि द्वापर के अंत में मथुरा मंडल में, पवित्र ब्रज मंडल में यदुवंश राज श्री कृष्ण अपने बाहुबल से आपको मुक्ति देंगे, क्योंकि वो तत्क्षण दैत्य बन गए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप चाहे कितने वर्ष तपस्या करो, त्याग करो, विरक्ति अपना लो, हाँ ज्ञान अर्जन करो, यज्ञ कर्म करो, कर्मकांड करो, इन भक्तों का अपराध करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो यही होना है। इसलिए बाह्य जो हम लोग कार्य करते हैं उसमें हम लोग को गर्व होता है कभी कभी, लेकिन वैष्णवों का हर समय, हर स्थिति में, पतित स्थिति में, उन्नत स्थिति में, एडवांस स्थिति में, हर स्थिति में वैष्णवों को दंडवत करते रहना चाहिए, उनका आदर सम्मान करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वैष्णवों को देख के हमको हर्ष भी नहीं हो रहा है, हर्षनम न दर्शनम, तो भी ये वैष्णव अपराध के बीच में माना गया है। इसलिए वैष्णव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान के भक्त जो हैं। वैसे ही वो रोम हर्षण सूद भी कथा कर रहे थे, वो बलराम जी आ गए तो उठे नहीं, वो तो हो गया ना उनका अंत वहीं, हाँ तिनका लगा दिया, फिनिश हो गए। क्योंकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान तपस्या, ये सब हमको घमंड देता है, क्रिएट्स प्राइड इन अस, तो हमको इससे बचना है। तो ये इस तरह से इतने बड़े भक्त, विष्णु भक्ति परायण राजा भीमरथ भी शाप से प्राप्त हो गए और उनको फिर कई जन्मों तक, कई सालों तक, हजारों साल तक रुकना पड़ा और द्वापर के अंत तक वेट करना पड़ा। तो ये मय दानव का पुत्र बन गए, मय दानव का पुत्र व्योम, और असुरों के संग में फिर वोमासुर बन गए। फिर यहाँ पर आकर उन्होंने कष्ट दिया भगवान को, और इन्होंने ही, इसी राक्षस ने उधर श्यामकुटी जो है ना गोवर्धन में, वहाँ पर राजा रानी का रत्न सिंहासन भी चुरा लिया था, ले गए थे हवा में उड़ाकर। तो ये यहाँ की कथा है। तो वीमासुर की गुफा भी वहाँ पर है, 2-3 जगह पर चरण चिन्ह माला चिन्ह है, और ग्राउंड लेवल पे वो भगवान बलराम जी के चरण चिन्ह हैं गाय के खुर के साथ। अभी यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर आपने दर्शन किया ना भोजन थाली का, इसकी कथा ऐसी है कि एक राजा थे प्राचीन काल में, सत्ययुग में, बड़े विद्वान थे और बड़े शूरवीर भी थे, हमेशा राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए हमेशा युद्ध करते थे, अधिक अधिक भूमि पादाक्रांत करने के लिए प्रयास करते थे। उनकी कन्या थी क्षत्राणी कन्या, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो हमेशा उनके साथ में जाती थी, क्षत्रियों की माताएं कन्याएं सब जाती है युद्ध में, तंबू में रहती है, पिताजी के, पिता या पति के जख्मों का ड्रेसिंग भी करती हैं, हमेशा उनका उत्साह देती हैं, हाँ एनकरेजमेंट। तो हर जगह पर पिताजी जीतते गए, राज्य का सभा सीमा विस्तार होते रहा, लेकिन एक युद्ध में वो हार गए, और हारने के बाद जीतने वाले राजा ने सारा साम्राज्य उसका ले लिया। तब इस कन्या को बड़ा ऐसी अनुभूति साक्षात्कार हुआ कि ये सब झूठ है, सब कुछ आज है कल नहीं है, इतने दिन था अभी एक दिन में समाप्त हो गया, विरक्त हो गई वो। तो ब्रज में कामे वन में आई और उसने एकादशी का व्रत किया निर्जला, और बहुत साल तक किया, कहते वो जवान थी, बालिका थी, वो 85 वर्ष की हो गई, तब तक वो एकादशी का व्रत करते हुए, भजन करते हुए यहीं रही। यथावकाश भगवान ने उसको दर्शन दिया, तो उसने वर, भगवान ने उनको वर दिया, क्या वर चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पत्थर बनना चाहती हूँ और आपके लिए भोजन थाली बनना चाहती हूँ, ताकि आप अपने बाल लीलाओं में यहाँ पर आकर ग्वाल बालों के संग मुझ, मेरे ऊपर बैठकर मुझ में भोजन किया करें। तो वो बनी यहाँ पर इंद्रसेन नाम की शिला, जो शिला आप देख रहे हैं उसका नाम इंद्रसेन शिला है, वो राजकन्या है जो यहाँ पर भोजन थाली के रूप में प्रकट है, और यहीं पर बैठकर उसका भक्ति को सम्मान देने के लिए भगवान ने हर रोज हर समय यहाँ पर आकर इन भोजन थाली में भोजन किया है। तो यहाँ पर भोजन करने का और यहाँ पर भोजन अर्पण करने का भी बहुत बड़ा महात्म्य है, इसलिए हमारी यात्रा में हमेशा हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रसाद लेते हैं, बाल भोग कोई बात नहीं। और उधर पहाड़ पे एक शिला है, उसका नाम है स्खलनशिला। पहाड़ पे इस तरफ वो गुफा है, इस तरफ सब दर्शन है, थोड़ा आगे जाएंगे तो फिसलनी शिला है, स्लाइडिंग रोल। वहां पर कृष्ण भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ, सखियों के साथ में घसरगुंडी किया करते थे। हाँ, 7 बार घसरगुंडी करने से फिर जन्म मृत्यु का मुंह देखना नहीं पड़ता है, ऐसा वरदान है। खेल खेल में ही भगवान के धाम में जा सकते हैं, ऐसा यहाँ का लीला है। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ की कथा जो थोड़ी विराम देते हैं यहाँ पर। अरे हाँ, एक कथा रह गई। तो बलराम जी महाराज यहाँ पर एक बार, जहाँ पर प्रभु जी के ऊपर एक दरवाजा है, वहाँ पर एक कमरा है, उसके अंदर एक मतलब एक ऐसा एक कटोरा है, तो वहाँ पर हमारे दाऊ जी महाराज बैठकर दूध पी रहे थे अकेले अकेले, छुप छुप के। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ग्वाल बालों ने देख लिया उनको, तुरंत गए उनके पास, झपट पड़े उसके ऊपर। तो उनके हाथ में जो पात्र था दूध का, वो सारा लुढ़क गया। हाँ, तो फिर वो दूध की धार जो है ना, वो ऐसे यहाँ से आई, एक शिला के ऊपर से यहाँ गई, और पूरा क्षीर सागर प्रकट हो गया। ये आपको लगता है सूखा सूखा है, ये सूखा सूखा नहीं है, ये क्षीर सागर है। मतलब कितना दूध पिया होगा उन्होंने और कितना गिर गया होगा, आप सोच सकते हैं ना। तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से यहाँ पर क्षीर सागर को प्रकट किया, जैसे वो हर धाम को प्रकट करना चाहते हैं। कोकिला वन में भी एक लीला में उन्होंने क्षीर सागर को प्रकट किया है। तो ये क्षीर सागर है जहाँ पर भगवान शेषशायी के ऊपर विराजमान होते हैं। तो आप लोग, यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि अभी जल तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर तो प्रचुर मात्रा में जल है लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मन से भी आप स्नान करेंगे यहाँ पर तो भी गौलोक धाम की प्राप्ति करेंगे। थोड़ा थोड़ा जल वहाँ पर है, उसमें आचमन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 7 प्रकार के स्नान में एक स्नान आचमन भी माना गया है। हाँ, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ये भी स्नान के बराबर माना गया है। दूसरा स्नान है स्नान, वो जो ऐश लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, राख राख रक्षा लगाते हैं, उसको भी अग्नि स्नान कहा गया है। और फिर नदी स्नान, और फिर सबसे बड़ा स्नान क्या है, हरिनाम स्नान, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वो सर्वोच्च स्नान माना गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जगन्नाथ प्रभु से एक प्रश्न ऐसा है कि चरण पहाड़ी जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले, कथा यहाँ बता दें। हाँ, क्योंकि ऐसा सुंदर वातावरण, ठंडा प्रसन्न। हाँ, ये वाला नहीं, चरण पहाड़ी आगे है, जाएंगे ना तो वहां पर कथा करने का मौका देंगे ना। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अभी जगन्नाथ प्रभु जो कहेंगे वैसे आगे बढ़ेंगे। सब लोग चरण भोजन थाली का दर्शन कीजिए, यहाँ पर जाके प्रणाम कीजिए, वहाँ पर जाके आचमन कीजिए, और वहाँ से आगे जहाँ निर्देश किया जाएगा वहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।